मेरी आयु बहुत छोटी थी, बड़े भाई और हमारे बीच में कुछ 16 वर्ष का गैप है। बचपन में ये आपको मैं बताऊं कि हम लोग का परिवार के अंदर किस तरीके से चला, वो तो आम तो जैसा हर परिवार के अंदर चलता है, फर्क थोड़ा ये रहा कि जो हम लोग का फाउंडेशन रहा परिवार के अंदर, वो एक बड़ा शुद्ध रहता था, पवित्र रहता था, कि भक्ति भावना का प्रवेश बहुत था। उसके जो नियम रहते हैं कि आरती उतारनी है, फिर भोजन स्वीकार करने का है, घंटा अपना टेम्पल में जाना पड़ता है, तो ये जो विधियां वगैरह है उसके हम लोग बिल्कुल आयबन रहते थे। और एक वायुमंडल भी काफी शुद्ध रहता था, और ये तो अच्छी बात होती है कि यही आगे चल के, अब ये तो मालूम नहीं था कि परिवर्तन होगा, कि भक्ति मार्ग से बाबा ज्ञान मार्ग में चले जाएंगे। ज्ञान वास्तव में क्या है उसके लिए बाबा ने तो बहुत से गुरु किए, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। बाबा की आशा यंग एज में, यंग एज मीन्स वर्किंग एज के अंदर ही यही रहती थी कि मेरे को परमात्मा मिले। परमात्मा जैसे आज हम लोग ये समझते हैं कि वो एक शक्ति बिंदु, उस जगह पे बाबा उसको फिजिकल बॉडी का फॉर्म देके विष्णु के रूप में हमेशा अपने पॉकेट में ही रखता था। एक लगन थी, लौ थी, लेकिन वास्तव में परमपिता सुप्रीम सोल का जो आकार है वो मनुष्य का तो नहीं है, वो तो शक्ति है, बिंदु है। हम लोग भी जो है, हम लोग का भी ये शरीर का आकार वो तो प्रकृति का एक तोहफा है, लेकिन वास्तव में हम लोग का भी जो रूप है वो एक ज्योति बिंदु है, जिसका न तो कोई सेक्स है, इसे कोई पहचान नहीं पड़ सकती है कि इसे कि मेल फॉर्म होगा या फीमेल फॉर्म होगा। ये तो सब पूरा अनुराधा रहता है अपने कर्मों के हिसाब से। वास्तव में जो अभी हम लोग यहां इकट्ठे हुए हैं, जिसको मैं अगर जो दिव्य नजर से देखता हूं तो दिव्य आत्माओं का ही मेरे को दिखाई देता है। आमतौर जो ब्रह्मांड में अनेक आत्माएं रहती है, उनका स्थान और हम दिव्य आत्माओं का स्थान कुछ अलग से दिख रहा है, क्योंकि हम लोग जैसे ही नया संसार जिसके लिए ये युग, जिसको संगम युग हम लोग कहते हैं, जो पांचवा युग बाबा ने कहते हैं, ये पांचवा युग जिसकी आयु बहुत छोटी है, इसी के अंदर हम लोग ट्रांसफर हो गए। जो पुराने कर्मों की जो धूल मटी वगैरह के अंदर जो उसके जो फोर्सेस एकदम कमजोर पड़ गए हैं, और हम लोग जो शक्तिशाली आत्माएं थी उससे हम लोग एक कमजोर आत्माएं बन गई है, और स्वयं पिता हम लोग के शक्तियों को प्रभाव देने के लिए, ताकि हम लोग में अपार एनर्जी बढ़ जाए, तो आने वाले युगों के अंदर जो एनर्जी नहीं बढ़ सकती है, स्लिप स्पिन करने की है, तो उसके लिए हम लोग मेहनत करें और उसका पूरा जितना प्रभाव है अपने में अपनाएं। सबसे ज्यादा जो बाबा का जो पुस्तक था वो गीता का था। शुरुआत ऐसे हुई थी कि जो अड़ोस पड़ोस में जितनी भी महिलाएं वगैरह, कुछ रिश्तेदार, कुछ रिश्तेदारों के जाने पहचाने, तो घर में आते थे दोपहर के टाइम 3:30-4 बजे के टाइम पे। बाबा उनको गीता के ऊपर ज्यादा करके सही इंटरप्रिटेशन, उसका अर्थ वो समझाते थे। मेरी छोटी आयु थी, मैं आंगन में खेल रहा था और सत्संग जो हो रहा था, तो अचानक मैंने देखा कि बाबा हंसते हंसते लेट गए और ऐसे ही चिल्लाने लगे कि जिसकी तलाश थी वो मैंने पा लिया। ये बाबा का पहला साक्षात्कार 1936 में हुआ था। सिलसिला चालू रहा और नेक्स्ट ईयर ऐसा प्रोग्राम बना के हम लोग कश्मीर जाएं, क्योंकि जब सोर्स मिलता है और कोई क्लू मिलता है तो उसको ज्यादा स्पष्ट करने के लिए एकांत की बहुत जरूरत रहती है। तो बाबा ने प्रोग्राम बनाया कि हम लोग 5-6 महीने कश्मीरी रहेंगे, और 5-6 महीने हम लोग कश्मीर में रहे थे, जहां ये अगर जो आप समझे कि बाबा का प्रवेश, मतलब ब्रह्मा बाबा का के अंदर जो परमपिता शिव परमात्मा का जो प्रवेश हुआ, तो कोई ओवरनाइट कोई फर्क हो गया बाबा की चाल चलन वगैरह में, कुछ हुआ ऐसा मेरे को फीलिंग नहीं आई। लेकिन मैं तो समझता हूं कि जो बाबा की जो मानसिक व्यवस्था थी वो ऐसी ही व्यवस्था थी कि जैसे हम लोग अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, बाबा ने भी मेरे हिसाब से काफी पुरुषार्थ किया। छोटी आयु के वजह से मैं ज्यादा इलेबोरेट नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये देखा जरूर कि रात को, दोपहर को 3-3 घंटे घर से दूर अपनी मस्ती में, कहीं खोज में उनका टाइम जाता था। उसके बाद जब वापस हम लोग लौटे तो ये संकल्प हुआ कि हम लोग का दूसरा मकान एक बन रहा था जो बाबा ने खास बनाया था, जिनकी आमदनी कम है, परिवार सुखी रहे, मध्यम दर्जे के जितने भी है उनको कम भाड़े पर इनको दे रहे हैं। लेकिन जब ये परिवर्तन हुआ तो हम लोग का जो प्लान चेंज हुआ, लास्ट फ्लोर डॉर्मिटरी बना दिया। यहां से हम लोग का ये ओम नवाज जिसका नाम आपने सबने सुना है, वही शुरू हुआ और वहां से ये पढ़ाई का सिलसिला शुरू हुआ था। अब ये रही शुरुआत।
यशोदा माता के बारे में कुछ बताइए।
भक्ति भाव भावना में जो सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन था वो यशोदा मैया थी। विचित्र तो बात तो ये है कि हर एक व्यक्ति का अपना इष्ट देव होता है। जैसे बाबा का विष्णु था, माता यशोदा का शंकर था शिव, मेरे से बड़ी बहन का कृष्ण था। मतलब एक किस्म का मंदिर नहीं था, डिपार्टमेंटल स्टोर क्या था वो था। भाई मैं तो बहुत छोटा था, मैं तो बस ये सोचता था कि भाई आरती जो हम लोग ये फिराते रहते हैं खत्म हो तो हमारा छुटकारा हो जाए। हम छोटे बालक थे ना, थोड़ा बहुत स्वभाव भी थोड़ा चंचल भी था, तो बस ये। लेकिन नियम था, नियम के पाबंद थे कि अगर जो नहीं करते हैं तो भोजन नहीं मिलने का। बाकी अगर जो हम लोग ये देखें कि जो कार्य बाबा ने जो निर्णय लिया था उसके अंदर माता यशोदा का काफी सपोर्ट बाबा को मिला था, हर प्रकार से इंस्पायरेशन। अभी धन की कमी क्या है, थोड़ा भक्ति भाव में समय ज्यादा दियो, माया बहुत है, एक किस्म का इंस्पायरेशन देने का। उसके बाद तो काफी फैलता गया, लेकिन सामने एक समस्या खड़ी हो गई। हम तो बच्चे ही थे बाबा के, हम तो बाबा को बाबा की नजर से देखते थे, और जो भी माताएं कन्याएं अपना परिवार छोड़ के बाबा की जो शरण में आए थे तो बाबा तो उनकी नजर में भी बाबा ही था। प्रश्न तो अटका यहां कि माता यशोदा बाबा को किस रूप में पढ़के, कार्य कठिन है। खास अगर जो माता है मेरे को उसका कुछ उसके ऊपर स्पष्ट करें। एक पतिव्रता स्त्री पति को बाप के बाबा के रूप में स्वीकार कर सकती है, किसको जवाब नहीं। या आप ये समझते हैं कि ये अनहोनी है। नागराज भाई उत्तर तो मिलता नहीं है। पांच बच्चों को जन्म भी दिया है, ये कितनी बड़ी कुर्बानी होगी माता की जो अपने पति को बाबा के रूप में पाए। भावनाएं बदलनी पड़ती है, वृत्ति बदलनी पड़ती है हर प्रकार से, क्योंकि बाबा जो समर्पण हुए थे मन से, या कागज दो जो आपको बताए हैं वो तो खाली टोकन है, लेकिन मन से जो समर्पण हुए थे उसमें पूरा परिवार है। बड़ी बहन जो कलकत्ते में है उसका तो लगन हो गया, हम लोग उसको परिवार से हटा देते हैं। दूसरी का भी हो गया, उसको भी हटा दिया, मैं माता और मेरी छोटी बहन। हम लोग जो हॉस्टल में जितनी भी अभी जो छोटी छोटी कुमारियां हैं तो वो तो आज दादियां हो गई है। हम लोग साथ में रहते थे, जैसी आयु थोड़ी बड़ी तो जो कुमार है वो अलग, कुमारियां अलग रहती थी, बाबा अलग रहते थे, कभी मैं बाप से रहता था, कई कारण होते थे। लेकिन उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा कोई कंसेशन अपने परिवार को बाबा ने कभी भी दिया नहीं है, उल्टा जो बाबा की शरण आके लिए है उसके लिए जो बाबा ने अपना प्यार का प्रदर्शनी दिया है वो परिवार से कई गुना ज्यादा दिया है। और मैं नहीं समझता हूं कि साधारण रूप में परिवार में जिस तरीके से अपने बच्चों को केयर किया जाता है, तो जो जितने भी बाबा के पास आए थे, माताएं आई, कोई एक बच्ची लेके आई, दो बच्ची लेके आई, मेल्स बहुत कम आए थे, माताएं ज्यादा आई थी, क्योंकि उनके जो पुरुष है कोई फॉरेन में था, कोई कहां था, कोई कहां था, तो उनको एक आसान हुआ। बाद में काफी उन्होंने भी सफर किया कि भाई जहां जाती है जिनका उनको ज्ञान नहीं है तो उनके ऊपर भी पाबंदियां बहुत, मारपीट भी बहुत हुई थी। लेकिन मतलब अपने भाग्य लेने के लिए उन्होंने हर एक बात का, हर एक तूफानों का सामना किया था, जो आज भी हमारे साथ है। आज हम लोग भी उनकी शिक्षाएं के ऊपर अपना कदम बढ़ा रहे हैं। आप भी जो इतनी संख्या जो बनी है ये सब उनका काफी मेहनत और उसका ये फल है जो आपको बांट रहे हैं।
दादा ईश्वर किशोर दादा के साथ कुछ अनुभव बताइए।
विश्व किशोर दादा बाबा के बड़े भाई का बेटा था, चतुर था और संपूर्ण समर्पित था। ज्ञान से ही पहले हमारी बड़ा भाई लगता है, उनके युगल को हम युगल नहीं कहेंगे लेकिन आमतौर हर परिवार के अंदर उसको भाभी करके बोलते हैं। तो विश्व किशोर जो हमारे बड़े भाई तो उसकी जो युगल भाभी संगतरी, उस समय काफी आंदोलन चलता था हम लोग की कम्युनिटी का, बहुत सी माताएं अपना घर छोड़ के, तो बाबा के ऊपर ये कुछ मुकदमा केसेस वगैरह ये सब काफी चले थे। तो बाबा ने एक पत्र लिखा कि बच्चे बाबा ने तुम्हारे को बनाया है और बाबा को आज तुम्हारी बहुत जरूरत है। पत्र पढ़ा और जितना कारोबार है समेट के अपने भाई को दिया, नोइंग वेरी वेल कि वो सफलता नहीं ला सकेगा, फिर भी बाबा की आज्ञा आप फौरन अपना कराची पहुंच गए। इसका पूरा जितना भी ध्यान था, लगन लव और फुल सरेंडर बाबा ने बिठा। मैं समझता हूं ऐसी विशेष आत्मा है तो बनना किसके लिए मुश्किल। फिर भी हम तो ये बात तो कभी नहीं कहेंगे कि असंभव है, लेकिन मेरी नजर के अंदर हर एक आत्मा का हर एक का अपना अपना रोल होता है और हर एक की अपनी अपनी विशेषता होती है। इसकी जो विशेषताएं हैं, मैं समझता हूं आज दिन तक उसके आजू बाजू के लेवल में भी कोई मैंने नहीं देखी।
मम्मा के साथ का अनुभव,
मम्मा की प्यार भरी पालना, ये मेरा बहुत अच्छा सौभाग्य है कि मैंने बहुत पाई। मम्मा की माता पड़ोस में रहती थी और दोपहर के टाइम जब मैंने आपको बताया था कि बाबा को साक्षात का पहला जो हुआ था शिव परमात्मा के प्रवेश होने से पहले का जो सेकंड आकियन जो हुआ था उसमें बाबा से प्रश्न किया गया कि या तो मेरे को चुनो या तो मेरी प्रकृति को चुनो। बाबा ने मेरे को बताया क्योंकि मेरे को बाबा के साथ रहने का सौभाग्य बहुत मिला है, मतलब सुबह से लेके रात तक मैं बाबा के पीछे ही रहता था छोटी आयु से। बहुत करके जो टाइम टेबल के ऊपर जो हिसाब चलता था तो एक सवा घंटा जो बाबा को बैठ के पूरे शरीर को हम तेल से मालिश करते थे तो कभी कहां चले जाते थे, कभी कहां चले जाते थे, कभी परिवार के सिलसिले में, कभी ड्रामा का आने वाला समय के बारे में सूचना देना, कभी कभी मेरे जीवन के लिए कई प्रकार से सावधान करना, कभी कभी अपने जीवन के अनेक रूप और लीला का अनुभव बताना और ये भी देखता था कि बाबा मेरे को शिक्षा दे रहा है कि जिस सामने तूफानों का मैं सामना कर रहा हूं उसको ध्यान में रखो और उसके लिए जितनी भी गुप्त बातें हैं जो मैं तो आपको समझाता हूं, जहां से बाबा ने कदम छोड़ा है उसी जगह पे उसी निशान के ऊपर कदम लगाना, इसमें तुम्हारा कल्याण है। ऐसा मत समझो कि मैं श्री कृष्ण का जन्म लेता हूं तो मैं संपूर्ण बन गया, नहीं। तूफानों का सामना पहले मैं करता हूं उसके बाद आप बच्चे करते हैं। तो मेरे को ये हमारे सौभाग्य रहे कि ज्यादा टाइम बाबा के सेवा में रहने से।
बाबा का हेयर कटिंग भी आप करते थे?
हाँ, मैं बाबा के मस्तक पे किसी को मैं हाथ रखने नहीं देता था, वो कैची बैची वो सब काटने बाटने का हम बाजार से लेके आए, बाल बड़ा हुआ, काटने का अपने हाथ से सब करना, सब किया।
दादा, आप किस लक्ष्य से आप अबू छोड़कर बॉम्बे गए?
जीवन में मैंने अपने बाप से, अपनी माता से या किसी से भी कोई भी वस्तु मांगी नहीं है, क्योंकि बाबा का जो भी एक शब्द निकलता था उसके ऊपर मेरा ध्यान बहुत ज्यादा था। जब हम कराची छोड़ के माउंट अबू पहुंचे तो कुछ महीनों के बाद मेरे को एक संकल्प उठा कि इतनी माताएं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े धनवान परिवार की जो माताएं, सब कुछ छोड़ के, किसने अपना पति छोड़ा, कितने अपने बच्चों को छोड़ा, पोतों का परिवार भटक गया, ये सब इतनी कुर्बानियां करके बाबा की छाया नीच संपूर्ण विश्वास से जो इतनी कुर्बानी की है, और आज हम लोग के पास उनको रात को भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं थी। मेरे को संकल्प उठा, लेकिन हिम्मत नहीं रही कि हम बाप से बात कर सके। डर के मैंने बड़े भाई दादा विश्व किशोर से बात की। दादा ने काफी डांटा कि देखो, बाबा को तुमने पूरा पहचाना नहीं है, ड्रामा के अंदर तुम्हें संशय बुद्धि हो, ये भी ड्रामा बहुत कुछ सिखाता है। मैंने कहा कि बाबा को शायद टेंशन होगा, और मैं अभी 23 साल का हुआ हूं और मेरे को कुछ आगे अपनी लाइफ का एम ऑब्जेक्ट क्या करने का है वो कुछ समझ में नहीं आता है, एक धुंधला सापन लगता है, क्योंकि जीवन को कोई मकसद बनाया जाता है तो उसके अंदर रिसोर्सेस चाहिए, और हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं था। जितना बाबा का धन बाबा ने अर्पण कर दिया, अगर जो बाबा बेघर तो उसका बेटा भी बेघर। दूसरी बात यह रही, मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन 0 out of 100, मैं स्कूल गया ही नहीं। तो ये जो हौसला रखे, जो मैंने अपने बाप से बात की कि मैं जाऊं कहीं कुछ ना कुछ करके, मैं धन और संपत्ति के लिए कुछ सफलता मिल जाएगी, बाबा पहले मुस्कुराए, फिर बोले बच्चे कर्म का हिसाब तो चुकाना ही है, और जब ऐसी समस्या आती है तो कोई बहाना बन जाता है। तुम्हारे को संकल्प बहुत शुद्ध आया है कि मैं जो भी बाबा के शरण में आए हैं उनके लिए कुछ मेहनत मजदूरी करके और कुछ कमा के भेज दूंगा, लेकिन तुम्हारे को कुछ संसार का अनुभव है ही नहीं, और सबसे कठिन बात तुम्हारे को ये लगेगी, तुम बाबा को छोड़ नहीं सकते। फिर भी अगर जो तुम्हारे को एक्सपेरिमेंट करने का है तो मेरी तरफ से छूट है, लेकिन बाबा तो बेकार है। मैं इशारा समझ गया, मैं बोला बाबा बेकार तो हम भी हैं। बाबा ने मेरे को तीन कंडीशंस डाले। नंबर वन, किसी से मदद नहीं लोगे। मेरे को प्रश्न उठा कि अगर जो मैं किसी से मदद नहीं लेता हूं तो बिजनेस तो कर ही नहीं सकता हूं। और दूसरी बात, बिजनेस का तो मेरे को कोई इल्म है नहीं। ठीक है, बुद्धि थोड़ी एवरेज से थोड़ी एवरेज, एक से एवरेज है, लेकिन धन के सिवाय बिजनेस करना एक बड़ा मुश्किल समस्या होती है। ठीक है, मदद नहीं लेने का, ओके। जो काम करो, जो कार्य करो, उसके अंदर ये सोचने का है कि लेने वाले की उन्नति हो, देने वाले की भी उन्नति हो, और कोई काम के अंदर झूठ कपट नहीं हो। जो भी कार्य करो वो शुद्ध करो। और ये संसार में और इस समस्या के अंदर वर्तमान समय, मैं समझता हूं तीनों कंडीशन बहुत कठिन थे, तो थोड़ा हेट हेटा के बाबा को बड़ा मंजूर है। अब बोल तो दिया, लेकिन रियल परफॉर्मेंस में लाना तो बहुत ज्यादा कठिन पड़ गया। एक तो एंटी वायुमंडल बहुत चलता था, फिर भी इस बात के अंदर हम सफल हो गए कि मेरे को जिसने ये जसलोक हॉस्पिटल जो जानते हैं उसके धनी ने मेरे को बोला कि मेरे को देखो संतान नहीं है, अब तो हमारे पास आके काम करो। मैं बोला नहीं करूंगा, क्योंकि आप बाबा के विरोधी हैं, और जो बाबा के विरोधी है उसके पास मैं कभी काम नहीं कर सकूंगा, क्योंकि एक्सीडेंट प्रोन होता है। मेरे को सिंगापुर भेजा गया, नहीं जमा, वापस आया, फिर तो मेरा समझो कि एक बड़ा परीक्षा का एक समय हो गया। मैं समझता हूं 3 महीने के अंदर मैं वापस इंडिया के इंडिया चलाया, और जो मेरा बाप के साथ लगन प्यार स्नेह कम से कम 5 या 6 दफा हर साल भागते बाबा के पास जाता था, चाहे 2 दिन के लिए चाहे 4 दिन के लिए। आके मैंने सोचा कि अभी देख अगर जो कामयाब होने का है तो थोड़ा हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। एक जोड़ी था, मैं उसके पास गया तो मेरे को माल चाहिए, पूरा दुकान की तरह, मेरे पास दुकान नहीं है एक्सपोर्ट करने के। कहां एक्सपोर्ट करोगे? श्रीलंका। हाँ, उधर जाते हैं, मालूम है। ठीक है, तो उसने आदमी को बोला कि नहीं सैंपल लाओ, बताओ करो। मैं बोला भाई पहले जरा लेन देन का हिसाब आपस में निपट लें, तो उसमें क्या देखने का। माल लिया, पैसा लिया, यही तो गुंजाइश है, अगर जो मेरे जेब की झड़ती लोगे तो 5 रुपए का नोट नहीं निकलेगा। और बोले मजाक कर रहा है, तो बोला नहीं तुम्हारे के अंदर, और वैसे भी मैं मजाक नहीं करता हूं, आगे करेगा ठीक है। अब देखो यहां आपका थोड़ा अटेंशन मैं ड्रॉ कराने चाहता हूं कि जब मेरे को बाबा ने आज्ञा दिया था तो बाबा ने सफलता का वरदान मेरे को साथ में दे दिया था। मेरे को कहा कि जो कार्य करोगे उसमें सवाय सफलता और कुछ नहीं होगा। तो अभी जो मैं आपको बताने चाहता हूं वो यही बात। तो जब मैंने उसको बोला कि मेरे जेब में 5 रुपए भी नहीं होगा, बोला ये तो मजाक कर रहा है, बोला नहीं ऐसी बात नहीं है, हो सकता है कि एक टचिंग हुई। उसने बोला कि 15 मिनट चुप रहा, बोला कि मैंने जीवन में कभी सट्टा खेला नहीं है, लेकिन आज मैं तुम्हारे से एक सट्टा खेलता हूं, अब कितना माल चाहिए बोलो। मैं खाली 5,000 का बस लिया, वो मैंने डिस्पैच कर दिया श्रीलंका, और जिसके पास गया उसने पूरा ले लिया। कितना बिल हुआ? मैंने बोला 12,500, 12,500 जब भी चाहिए लेके जाओ। अब मेरे को 1-2 महीना रहना था, बड़े भाई उधर रहते थे तो रहने करने की मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। इन बिटवीन टाइम पास करने के लिए 2-3 दफा गया तो उसने बोला कि एक काम करो, तुम्हारे हमारे पास 12,000 रुपए निकलते हैं, कभी भी लेके जाओ, लेकिन मेरा प्रपोजल ये है कि अगर जो तुम यहां का रतन इंडिया में बेचो तो उसमें तुमको लाभ अच्छा मिलेगा। हमारे भाई देखो भैया, डायमंड वो तो मेरे ब्लड में है क्योंकि बाप हीरे का काफी जानकार था, और ये स्वाभाविक होता है तो ब्लड के अंदर उसका कुछ न कुछ गुण उसमें जरूर रहता है। बाकी ये कलर स्टोन के अंदर मेरे को इतनी जानकारी नहीं है, बोला हमारी जिम्मेवारी है। तो उसने मेरे को बोला कि 50,000 का तुम माल लेके जाओ। मैंने बोला नहीं, कहीं अगर जो कोई बाय चांस एक्सीडेंट हो जाए तो इतना जोखम मैं नहीं ले सकेगा, क्योंकि संसार क्या कहेगा, समाज क्या कहेगी। तो भाई इतना बड़ा व्यापारी, हीरे का व्यापारी, और उसका जो बेटा है वो छोटी बात के अंदर अटक गया है, नहीं वो नहीं हो जाएगा। बाय चांस मैं लेके आया, बेचा, वहां से मेरी कैपिटल बनी। अब जब कैपिटल बनी तो फिर तो हमारी जो रफ्तार है वो बहुत फास्ट होती थी, और मेरी जितनी भी आशाएं रही कि नहीं अब आई एम इन अ पोजिशन, तो अपना जो ये अलौकिक परिवार का है उसको मैं अपना साथ दे सकूं, और ये हमारे बिजनेस का सिलसिला यहां तक पहुंच गया। भाई बहने कुछ पूछते नहीं है, उनको शायद कोई प्रश्न ही नहीं है, संतुष्ट आत्मा है।
सबका प्रश्न इधर सार रूप में पूछ रहे हैं
संत। अच्छा हाँ, ऐसी बात कहो ना, नहीं तो मैं तो ऐसे ही देखता था, ऐसे ही मैं अनुभव कर रहा था कि सब संतुष्ट आत्माएं हैं।
दादा अभी आपके परिवार में कौन कौन है?
मनोज को तो मैं समझता हूं बहुत, आप लोग बहुत जानते होंगे क्योंकि आप तो जितने भी यहां बैठे हैं, कुमार या मेल्स, मनोज को तो बहुत करके सब जानते ही होंगे। तो एक बच्चा है और एक बेटी है। मनोज अभी तक बैचलर है, रहेगा समझता हूं कि बैचलरी, परिवार का ये समझे कि एक आखिरी दीपक है और बेटी को एक लड़का है, पुणे में रहती है। पहले 5 साल चली गई अमेरिका, वैसे पहले तो नाम उसका रेशमा है, बाद में उसका नाम लगन के बाद वंदना रखा। वो हर साल एक दफा यहां आती है। अगले महीने से कारोबार को थोड़ा क्या मतलब काफी कमती करके मैंने वानप्रस्थ ले लिया। क्योंकि बहुत समय से संकल्प भी आता था और जो हम लोग का आपस में भाई बहन का, जिसको मैं बाप समझता हूं, आप भी उसी को बाप समझते हैं, और हम लोग का जो आपस में रिश्ता नाता सिर्फ एक रह गया, भाई और बहन, बहन और भाई। मैं नाम भी नहीं जानता हूं, लेकिन उनके प्रति इतना प्यार रहता है जो एक बड़ा अलौकिक है। तो मैंने ये सोचा कि ऐसे अपने अलौकिक परिवार से, जो कि बाप दादा अगले साल भी जब आए थे और अभी भी इस बात के ऊपर मेरे को सूचना दी कि लौकिक परिवार को बहुत अच्छा संभाला और अलौकिक परिवार के लिए भी निमित्त आप बने हैं, इसका बराबर का बैलेंस रखो। तो ऐसे विचार आने के बाद तो मैंने निर्णय ले लिया कि व्यवहार को थोड़ा कंट्रोलेबल लेवल के अंदर आके मनोज के जिम्मे सौंप दें। और बाद में मैंने ये भी महसूस किया कि जब आप लोग कभी भी हमारे को देखते हो तो आप हैं, आप हाथ उठाओ, मैं फिर प्रश्न करूं, आप फिर उत्तर उसका उत्तर स्पष्ट करूं। आपकी नजर जब मेरे ऊपर पड़ती है, सबसे बात कर रहा हूं, तो आपके सामने साकार बाबा है और मैं साकार बाबा नहीं हूं। मेरा नाम नारायण है। आपको जो प्यार मिलता है बाबा की तरफ से मिलता है, मैं आपको भाई की तरफ से बहुत प्यार देता हूं, लेकिन जो प्यार आपको जो मिल रहा है वो बाबा का प्यार मिल रहा है। आप यू समझते हो कि आप बाबा से मिल रहे हो, क्योंकि मैं उस वक्त अव्यक्त रूप में हूं।
बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अंत में दादा से हम यही कहेंगे कि दादा आप भी बाबा के साथ हैं, हम सब भी साथ में हैं, लेकिन आपको जो गॉडली गिफ्ट मिली और जो स्पेशल मिल गया चांस इस संगम युग में, और वैसे लौकिक रीत से और अलौकिक रीत से ब्रह्मा बाप के साक्षात सुपुत्र बनने का ऐसा अवसर सबको नहीं मिलता है, तो हम सब आपके लिए जो श्रेष्ठ भाग्य है उस पर, और आपने जो समय अपना शेयर किया और जो हम सबको अच्छे अच्छे अनुभव सुनाए, हम सब एक बार फिर ताली बजा करके अपने दादाजी को धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं फिर हमसे जल्दी मिलेंगे और अच्छी डिटेल से और बात करेंगे।